ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓம் பத்ரன்னோ அபி வாதய மனஹ ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் க்ருபா த்வமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சசாணூரவர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். சிவ மஹிம்ன ஸ்தோத்ர. ஸ்லோக் நம்பர் 13, साथ में उच्चारण कीजिए.
यदद्भिं सुत्राम्णः वरद परमोचैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं सम्यक् वरिवसतरी त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै பவதி சிரஸ்வைய வனதிஹி.
யததிம் சுத்ராமணஹ வரத. வரத யானே ஹே வரதான் தேனே வாலே மகாபிரபு, யானே கிசி கோ ஐசா லகே கி பரமாத்மா கோ ஜானே கே லியே பரமாத்மா கி கிருபா பிராப்த கர்னே கே லியே ஹமே இத்னா சப் குச் பஹலே படனா படேகா. ये अतद व्यावृत्ति जहत अजहत लक्षणा ये सब हमें मालूम हो तो ही वो परमात्मा की कृपा होती है. तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं हो और फिर मेरे अस्थि होने में मेरे आस्तिक्य में आपको श्रद्धा हो तो भी काम चल जाता है. आप कैसे हैं? आप वरद हैं, आप वर देने वाले हैं. अज्ञानी को अज्ञानी के ऊपर भी आप कृपा करने वाले हैं. तो अभी से भक्त को निश्चिंत कर दिया जाता है कि अगर ज्ञान या अज्ञान कुछ भी हो मैं वर देने के लिए उत्सुक रहता हूं. किसके लिए? जो मेरे अस्तित्व में, सिर्फ मेरे अस्तित्व में मानने वाला होगा तो भी वो काफी है. आप कैसे हैं? तीनों भुवनों को जिसने दासी के जैसे वश किए हुए हैं वो बाणासुर जो है, वो बाणासुर यानी यहां असुर की बात है, दानवों की बात है. और ये बाणासुर तीनों लोग दासियों के जैसे वश करने योग्य किसके कारण बना, किसके वर से बना? तो बोले आप महादेव के वर से ही, आशीर्वाद से ही इंद्र की समृद्धि भी उसके पास तुच्छ हो गई. ऐसे बाणासुर के ऊपर भी आप कृपा करने वाले हैं. तो यहां कहा है कि आपकी जो समृद्धि है न कस्याप्युन्नत्यै हि भवति शिरसः त्वयि अवनति. आपके आगे कोई भी मस्तक झुकाने वाला होगा, कोई भी जो मस्तक झुकाएगा उसकी उन्नति ही होती है. यहां ये जो श्लोक है इसे शास्त्र की भाषा में अर्थवाद या स्तुति कहते हैं. और श्रीमद् भगवद गीता में जो बात की है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्रापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि. तो यहां पाप का आचरण कौन करते हैं? तो असुर पाप का आचरण किए जाते हैं, करते देखे जाते हैं. दानव पाप का आचरण करते हैं. तो बोले हम अगर पाप का आचरण करने वाले हैं, या पहले जब अज्ञान था, जब पता नहीं था चित्त शुद्धि क्या होती है, जब हमें पता नहीं था कि राग द्वेष नहीं होने चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह नहीं होने चाहिए, और तब जब हमने कर लिए वो गलत कर्म, तो अब उसका क्या होगा? मेरे जैसे को क्या आत्मज्ञान, आत्मलाभ या परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं? तो यहाँ बाणासुर का दृष्टांत देते हैं कि बाणासुर यानी पापों का भी अधिपति, यानी मैक्सिमम जो पाप कर सके वो, मैक्सिमम काम कर सके, क्रोध कर सके, लोभ कर सके, मोह कम सके, ये अवधि है काम क्रोध लोभ मोह की, हम कहते हैं ना मर्यादा, हाइट ऑफ इट। तो यहाँ सब आसुरी प्रवृत्ति की जो हाइट है, जिससे आगे कोई आसुर बन ही नहीं सकता, बुरा कर ही नहीं सकता, बुरे कर्मों की अवधि जिसके पास समाप्त हो जाती है, ऐसे बाणासुर भी जब आपके शरण में आए, आपकी आराधना की, तब आपने उन्हें तीनों विश्व का आशीर्वाद दे दिया, तीनों विश्व का अधिपति बना दिया। हे करुणेश्वर, इसीलिए महादेव को भोले और शंकर इसीलिए कहते हैं कि कोई भी हो देव या दानव, अगर दानव को भी आप इतनी समृद्धि दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं उनके गुना, तो मैं तो आपके लिए, मैंने जो उल्लंघन किया है किसका, तो शिव निर्माल्य का जो मैंने उल्लंघन किया है, वो उल्लंघन हमेशा मेरे लिए आपके पास मुझे माफी ही मिलनी चाहिए। अब यहाँ पुष्पदंतव जी कहना क्या चाहते हैं, शिव निर्माल्य का उल्लंघन करना यानी क्या? शिव निर्माल्य यानी शंकर परमात्मा का नाम लिया हुआ है और वो पुष्प चढ़ा है, हम क्या कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बिल्व पत्र जब हम अर्पण करते हैं तो बोले ये तीन दल है, ये मेरा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, ये अज्ञान शरीर है, ये तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों त्रिपुटी है, हाँ कर्म कर्ता और कर्म की जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ जो जितनी तीन तीन से देखे, तीन से ही सब कुछ बनता है, माया का सत्व रजस और तमस ये तीन गुण है, तो जितनी ये त्रिगुणात्मिका माया से तीन तीन की त्रिपुटियां मेरे जीवन में है, वो मैं सब आपको अर्पण कर देता हूँ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम, आप तीन नेत्र वाले हैं, तीन आयुध रखने वाले हैं, त्रिजन्म पाप संहारम, मेरे तीन, ये तीन शरीरों से जितने जितने मेरे कर्म हुए हैं वो सबका पाप का संहारण करने वाले, एक बिल्वम शिवार्पणम, ऐसे में एक बिली पत्र को अर्पण करता हूँ। अब बिली पत्र तो जड़ है, एक पत्ता है, उसके अंदर चेतनत्व कौन लाता है? जब ये शरीर मन बुद्धि का संघात जो हाथ में बिली पत्र लेता है, वो उसे चेतनवंत कर रहा है और वो चढ़ा रहा है। तो बिली पत्र अगर गिर गया, बिली पत्र का उल्लंघन किया, तो वो तो जड़ एक पत्ता है, उसका उल्लंघन क्यों, इतनी माफी, इतना स्तोत्र रचना क्यों पड़ा पुष्पदंत जी को? देखिए, ये बिली पत्र का उल्लंघन करना यानी जो कोई भी परमात्मा के शरण में गया हो, परमात्मा के शरण में गया हो यानी तीनों शरीर से परमात्मा के शरण में गया हो, जिसने अपने तीनों शरीर परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, जिसने अपनी तीनों वासनाएं परमात्मा को अर्पण कर दी है, तीनों वासनाएं, ये त्रिदलम में तीन वासना भी आ गई कि हे परमात्मा, मेरे तीन प्रकार की जो वासना है उसको इसको भी आप, तीसरा जो आपका ज्ञान का नेत्र है उससे आप भस्मीभूत कर दीजिए, मैं आपके पास खड़ा हूँ। ये क्या आप एक्सरे करने जा रहे हैं? तो वो जो टेक्नीशियन होता है वो आपको क्या बोलते हैं कि भाई बी स्टडी, आप स्टेडी रहना, वहीं खड़े रहना, भागना नहीं, सांस लेने को भी ना बोलते हैं, हाँ सांस भी चढ़ा लेते हैं और बोलते हैं बी स्टेडी, और फिर वो एक्सरे जाता है। तो यहाँ भगवान के सामने रहना है तो थोड़ा मन की चंचलता जो है, शरीर की चंचलता जो है, ये दूर तो करनी पड़ेगी ना, तो ही कोई आपका अज्ञान दूर करेगा ना, तो ये स्थूल रेस डालने के लिए भी आपको रहना पड़ता है अचंचल। तो यहाँ तो ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, यहाँ स्टडी रहना यानी क्या कि मन जो है वो परमात्मा में वो सूरत बनाए रखनी, लगाए रखना। बैठ तो आप ज्यादा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा कोई एक घंटा दो घंटा बैठ सकेंगे ना, शरीर की भी अपनी एक मर्यादा है, पर मन की कोई मर्यादा नहीं है, मन को तो आपको स्थिर बनाए ही रखना है। और इसीलिए ये सत्संग श्रवण भजन कीर्तन कोई भी तरीके से, आप कोई प्रकृति को जो भी माफक आ जाए, ऐसी तरह वो परमात्मा का भाव जो है अपने भीतर बनाए रखिए। तो बोले कि हम बात कर रहे थे कि जो तीन शरीर से परमात्मा को अर्पित हो गया है, तीनों वासना परमात्मा को अर्पित हो गई है, कौन सी तीन वासना, तो बोले ऐषणा त्रय की बात करते हैं, जितने जितने विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो जितने विषय है उतनी सारी वासनाएं हैं। तो भाई इनको तीन हेडिंग में रखना है तो कैसे रखेंगे? तो बोले पुत्रेषणा, हाँ, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र की इच्छा यानी मेरा नाम रहे, संसार की इच्छा, लोकेषणा, लोकेषणा यानी मेरी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होने के लिए नॉट नेसेसरी कि आपको कोई बड़ा बनना पड़ेगा, कुछ शेठ बनना पड़ेगा, जरूरी नहीं। सबको प्रतिष्ठा की भूख होती है, कोई भी कोई छोटा सा कार्यकर होगा उनको भी अपनी, सबकी अपनी अपनी स्टेटस, अपना अपना प्रतिष्ठा तो सबको है। तो ये प्रतिष्ठा के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तब वो ऐषणा बन जाता है। प्रतिष्ठा बुरी चीज नहीं है, प्रतिष्ठित तो हो, प्रतिष्ठा यानी कि हम सब प्रतिष्ठित है, ये धरा के ऊपर हम ये शरीर मन बुद्धि से प्रतिष्ठित है। कहीं कोई घर पे है, कोई बाहर है, प्रतिष्ठित तो कहीं ना कहीं तो है ही। अंत में कुछ भी आपके पास नहीं है तो परमात्मा के अंदर आप प्रतिष्ठित है पूरे के पूरे, पर मैं प्रतिष्ठित हूं ऐसा वो प्रतिष्ठा के साथ मैं लग गया तो वो ऐषणा बन जाती है। हा? और वित्तेषणा, वित्तेषणा यानी कर्म काम भोग की इच्छा, ये पंच विषय के भोग की इच्छा जो है, आसक्ति जो है, राग जो है, वो ऐषणा की बात करते हैं। तो तीनों ऐषणा से जो समर्पित हो गया है, तीनों त्रिपुटिया जिसके जीवन में परमात्मा को समर्पित हो गई है, उपासना, उपास्य और जो उपासक जो है, वो तीन प्रक्रिया, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों प्रक्रिया से सब कुछ, प्रक्रिया कर्म करता और कर्म की जो प्रोसेस होती है, कर्म का जो भोग होता है, वो तीनों त्रिपुटिया परमात्मा को जब समर्पित कोई कर देता है, हाँ, उसके लिए कुछ भी अब करना बाकी नहीं है। हाँ, नास्य कृत कृतेन, देखिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्य कृत कृतेन, अब किया नहीं किया वो व्यक्ति के लिए एक ही हो गया हो, ऐसा समर्पित व्यक्ति। हम अपने विषय में ही आएंगे कि ऐसा जो भी समर्पित व्यक्ति है जिसे अब कुछ नहीं करना है, कोई उपासना कोई भक्ति नहीं करनी, क्यों? क्योंकि पूरा समर्पण है। किसके साथ कोई भक्ति करेगा? भक्ति के लिए त्रिपुटी चाहिए, हाँ, दूरी चाहिए, द्वैत चाहिए। यहाँ तो समर्पण यानी क्या कि समर्पित यानी मैं ही वो हूँ, चिदानंद रूप शिव केवलोहम तदेको अवशिष्ट शिव केवल। अवशिष्ट यानी तीनों शरीर अर्पण हो गए, काया वाचा मनसा सब त्रिपुटिया अर्पण हो गई, सब वासनाएं अर्पण हो गई, और जो फिर जो बच गया वो शिव है और वो मैं हूँ। कौन बच गया आप ही बताइए मुझे, कौन बच गया? सब वासनाएं आपने दे दी, शरीर दे दिया, हाँ, शरीर यानी शरीर का जो देह भाव जो है, मैं ये शरीर हूँ ऐसा भाव आपने परमात्मा को अर्पण कर दिया। मैं ये सूक्ष्म शरीर, मैं ये मन हूँ, सुखी दुखी होने वाला हूँ, वासनाएं करने वाला हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसे जो भी विचार है वो आपने समर्पित कर दिए तो बचेगा क्या? क्योंकि शिव कौन है? तदेको अवशिष्ट शिव केवलोहम, तो कौन बच जाता है? क्योंकि आपको भी अर्पण करना है, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि अर्पण क्या करना है पता नहीं है। न स्नाने न दाने न प्राणायामम शते न वा, भाई नदी में जाके शरीर अर्पण कर दिया स्नान से, वो बुरा नहीं है, चित्त शुद्धि का अवश्य साधन है पर अंतिम नहीं, दान शुद्धि का साधन है पर अंतिम नहीं, प्राणायाम साधन है पर अंतिम नहीं, तो क्या है? आत्मिक बोधे न विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। ये शांकर वेदांत सिद्धांत का यही प्रतिष्ठा है, आत्मीय के बोधे न बिना विमुक्ति। शंकराचार्य जी ने बता दिया ये सब कुछ कीजिए ना नहीं है, पर अंतिम जो है वो आप जान लीजिए। तो तदेको अवशिष्ट, अंत क्या है? आत्मीय के बोध, आत्मा की जीव ब्रह्म क्या ऐक्य जो है वही अंतिम है, वही चिर शाश्वत शांति का कारण है। और वो कैसा है? तो शास्त्र बताता है अवशिष्ट, यानी अवशिष्ट यानी बाकी रहा हुआ। तो कौन सी प्रोसेस के बाद बाकी रहता है? आप कोई भी पांच छह चीज फैक्ट्री में डाल देते हैं, फैक्ट्री में पांच छह चीज डाल दी और एंड प्रोडक्ट बाहर आया, अब चीजें डाली है तो कुछ बाहर तो आएगा ही ना, नहीं तो कोई फैक्ट्री क्यों लगाएगा? हमारी फैक्ट्री कौन सी है, हम अर्पण करना ही सिखाते हैं। यहाँ से बोलते हैं भाई द्वैत को अर्पण कर दो, वासनाओं को अर्पण कर दो, शरीर मन बुद्धि के भाव को अर्पण कर दो, ये कर दो ये कर दो। अर्पण याद है, ये परमात्मा रूपी जो बड़ी फैक्ट्री चल रही, बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, वहां हम अर्पण किए जाते हैं किए जाते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा हाँ, उसमें सब मशीन सब कुछ ले आएंगे, सब कुछ अटैचमेंट करेंगे, और जो रॉ प्रोडक्ट है मटेरियल जो है वो डालेंगे, और बाहर कुछ आएगा ही नहीं, तो एंड प्रोडक्ट ही नहीं आएगा। तो बोले ये तो हास्यास्पद बात है। तो क्या हमारी बात हास्यास्पद नहीं लगती? हम समर्पण करने के लिए तैयार है, समर्पण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? क्या कुछ नहीं, उसकी फलश्रुति कुछ नहीं? तो बोले एंड में क्या है, अवशिष्ट जो बाकी रहेगा, ये सब का अर्पण करने के बाद बाकी कौन रह जाता है, एंड रिजल्ट क्या है? मैं अवशिष्ट कौन रह जाता है? भाई मैं समर्पित करने वाला, अर्पण करने वाला तो बाकी रह ही जाता हूं। तीनों शरीर के भाव अर्पण कर लिए, पर अर्पण करने वाला जो है वो तो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। जो अर्पण करता है उसका कभी भी अभाव या बाध नहीं हो सकता, वो तो रहता ही है। आपका जो अहम है, आपका जो मैं है, बिना अहंकार का कर्ता भाव, क्योंकि कर्ता भाव दे दिया है, मैं ये शरीर हूं वो भाव दे दिया है, फिर भी कुछ रह जाता है। अर्पण करने वाला, बाध करने वाला, निरसन करने वाला रह जाता है। यही बात विवेक चूड़ामणि में भी आती है, इसीलिए प्रकरण ग्रंथ पढ़ने ही चाहिए। वहां भगवान शंकराचार्य को शिष्य पूछते हैं कि हे शंकराचार्य जी, कहते हैं कि देखिए आपके पंच कोश है, अन्नमयी प्राणमयी मनोमयी विज्ञानमयी आनंदमयी, ये जो कोश है, कोश याने मैं ये हूं, वो भाव वो आवरण कर देता है मेरी बुद्धि को, सूक्ष्म बुद्धि को, वो कोश कहलाते हैं। भाई उनको आप एक एक करके उसका तादाद में तोड़िए, निकाल लीजिए। तो शिष्य कहते हैं कि अरे भगवान, ये सब कोष का मैंने निरसन तो किया, मैंने उसका निरोध तो कर दिया, अब तो शून्य ही बचा है। तो बोले शून्य नहीं बचा है, तू तो बचा है ना बात करने वाला, वही तेरा स्वात्मा है, वही तेरा सच्चा स्वरूप है। तो हमारी बात कहां से निकली थी कि ऐसा जिसने समर्पण कर लिया है और उसने इतने हजारों बिली पत्र में से कोई एक समर्पण करने वाले का बिली पत्र अगर आ गया तो हमें नुकसान है। कहने का तात्पर्य, पुष्पदंत जी को इतनी माफी क्यों मांगनी पड़ी? क्योंकि हमें क्या समझना है, बिली पत्र के ऊपर से जाना, इतनी ही बात समझानी है? तो बोले नहीं, जिस व्यक्ति ने ऐसा समर्पण कर लिया है वो व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी आपने गलत सोचा तो समझ लेना कि आप शिव निर्माल्या के ऊपर से गए हैं। क्योंकि पुष्पदंत जी क्या थे, मानसिक रूप से गए हैं ना, वो तो अंतर ध्यान हो गए थे, वो सूक्ष्म रूप से ऊपर गए थे ना। तो यानी जिसने ये कर लिया है उसके बारे में एक भी बात गलत सोच दी तो समझना आप शिव निर्माल्य के ऊपर से गए हैं। उसके लिए गलत किया तो शिव निर्माल्य के ऊपर से गए हैं। हाँ, गलत सोचा, कहने की तो बात बहुत ही दूर हो गई। इसलिए कल भी मैंने ये बात के ऊपर बहुत आपका ध्यान लाने की कोशिश की थी कि कभी भी आपको पता नहीं है कौन वहां पहुंच गया है, या कोई सिम्टम आपके ऊपर, कई लोग होंगे ज्ञानी, कई पहुंच गए होंगे, उसकी कोई निशानी नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इनफैक्ट ऐसे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं लगे कि इसको कैसे ज्ञान हो सकता है। हाँ, तो ज्ञानी जन गूढ़ गुह्य वर्तन कर रहे हैं, जो भी कोई है, नॉट नेसेसरी कि यही कपड़े में होने चाहिए, आप गृहस्थी भी हो सकते हैं, पर किसी का भी, इसीलिए किसी का भी द्वेष नहीं करना है, वो इस कारण क्योंकि वो पहुंच गया होगा, वो परमात्मा को पा लिया होगा, तो आपने मान लो कि शिव निर्माल्य का उल्लंघन किया है। इसीलिए किसी से भी राग नहीं करना है, किसी से भी द्वेष नहीं करना है, इसीलिए किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करता है। अनजाने में भी वो जो व्यक्ति है अभी अभी क्रोध कर रहा था और नेक्स्ट मोमेंट ही उसको वैराग्य आ गया और समर्पित हो गए तो हमारा क्या होगा? और इसीलिए अगर हम अपने आप को साधक कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो ये बात साधक को बहुत ही ध्यान रखनी जरूरी है। तो इसीलिए बाणासुर, उनको डर लग गया पुष्पदंत जी को कि भाई मैंने ये शिव निर्माल्य क्या उल्लंघन किया है, यानी ये जो राजा जो थे, काशी नरेश जो थे, वो तो साक्षात परब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए थे और उनकी चीज को मैंने छुआ, उनकी चीज की मैंने चोरी की, ये क्या बता रहे हैं कि कभी ये ज्ञान भी जो प्राप्त करना है ना, कभी भी चोरी से प्राप्त नहीं करना ना? कोई भी आप सामने आके बैठिए, प्राप्त कीजिए, कभी भी चोरी छुपे ये प्राप्त करने की चीज नहीं है। चोरी छुपे कौन प्राप्त करता है? भाई जिसका अहंकार झुकता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा और सामने आके बैठूं, मैं सुनूं, मेरा समाज क्या कहेगा कि ये इतना बड़ा है और उसको किसी के पास जाना पड़ता है, किसी के चरण में बैठना पड़ता है, मेरा अहंकार नहीं मानता है, तो ऐसी चोरी भी नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें श्री पुष्पदंत जी हमें बताना चाहते हैं, श्लोक नंबर 14 और 15 एक साथ। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा कल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनोयश्च विशिखः सपश्यन्निशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिशुपाथ्यः परिभवः। यहाँ अभी श्लोक नंबर 14, जगत रक्षा के लिए परमात्मा ने, शिव ने जो विषपान किया है उसकी बात कर रहे हैं। ये पूरे समष्टि की बात है, ये विषपान क्या है, क्यों किया, इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं श्री पुष्पदंत जी। हे तीन नेत्र वाले देव और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया, तब जो जहर है, जो विष है, वो अचानक प्रकट हुआ। देखिए मंथन क्यों किया, समुद्र मंथन जब शुरू किया तब इच्छा किसकी थी कि भाई उसके भीतर जो भी संपत्ति है, समृद्धि है, सूक्ष्म और स्थूल, वो हमें प्राप्त हो। तो ये पहला ही वाक्य जो है ये हमें सिखा रहा है कि जहां आपको लगे कि संपत्ति की, समृद्धि की पॉसिबिलिटी है और हम संसार में उसी के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो मान लेना कि विष सबसे पहले निकलेगा ये संसार में। ये संसार का, ये संसार वृक्ष जो है, ये संसार वृक्ष का दर्शन किया हुआ है। तो हम अगर सोचते होंगे कि कुछ संसार में और जाना है, और मंथन करना है, और कुछ करना है, और कुछ डेवलपमेंट करना है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है, तो समझ लेना विष की तैयारी रखना। ये पहले से पता होता है ना, आप संसार में जाइए, हर्ज नहीं है, पर इतना पता रखिए कि विष निकलेगा, फिर उसका तिरस्कार नहीं कीजिए। हाँ, तो ये बता रहे हैं। और नहीं जाना तो सबसे अच्छा है, और अगर प्रवेश हो ही गया है तो समझ लेना विष का आना स्वाभाविक है। उसके साथ अब सुलह करके, उसके साथ द्वेष करके या राग करके कोई भी प्रकार से उसके भीतर, उसके पीछे अपनी शक्ति का रहस्य मत करना। विष निकलना स्वाभाविक है, यानी विष की अब कंप्लेन भी मत करना, डोंट कंप्लेन, शिकायत भी मत करना। अरे भाई देखो मेरा संसार अभी ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ द्वेष किया, ये किया, वो किया, पता लग गया ना क्या है, विष निकल नहीं, और सबसे पहला निकला। हाँ, पहले ही मुंह कड़वा हो गया, पहला ही ग्रास चटनी समझ के खाया, पर करेले की या नीम की चटनी थी, क्या हुआ, हरा समझ के खाया, थाली में रखा, हरा समझ के खाया और नीम निकला पहले ही ग्रास में, तो पूरा खाना क्या है, पूरा खाना बिगड़ गया। यहाँ शिकायत अभी मत करना, संसार का मंथन किया है, विषयों का मंथन किया है, तो जहर निकलना स्वाभाविक है, शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहा है। अभी आगे कहते हैं ब्रह्मांड का ये जो विष निकला वो पूरे ब्रह्मांड का नाश करने के लिए समर्थ था। तो संसार में जब हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कि संसार के साथ आप ये विष बता रहे हैं सिंबॉलिक, तो ये कैसे हो सकता है? हमारा जो विष है वो कैसे हमारे छोटे से व्यष्टि के संसार का नाश कर सकता है? तो बोले ये विष का रूप कैसा है, विष का स्वभाव कैसा है जान लीजिए। ये विष का स्वभाव विचार है। वी पैसे समझ लीजिए, वी यानी विष, वी यानी विचार। ये विचार बन के आ रहा है विष। कैसे विचार बन के आ गया? विचार बन के दुर्योधन के मन में आ गया। हा? रत्ती भर भी जगह नहीं दूंगा, ये विष आ गया। समुद्र में गए, संसार समुद्र में, और विष आ गया कि पांडवों को जगह नहीं दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी के मन में विष आ गया कि वो पद्मिनी के दर्शन करने ही है, देखना ही है, ये चाहिए। तो ये विष विचार बन के आता है। कौन से विचार बन के? जिद के विचार बन के आता है, अहंकार के विचार बन के आता है कि मुझे ये चाहिए ही, ये मुझे पाना ही चाहिए, मैं इसके लिए योग्य हूं, और ये मुझे जब तक नहीं मिले तब तक ये विष मैं फैलाता ही रहूंगा। ये हमारा जो विचार रूपी विष है, हमारे पूरे संसार, हमारा पूरे फैमिली को, सोसाइटी को कलुषित करता रहता। हमारा एक विचार, एक विचार आप निकाल लो तो क्या होगा? आप भी निर्विष हो जाएंगे, आप भी शुद्ध हो जाएंगे, और आपके जो आजू बाजू की जो प्रकृति है, स्थूल प्रकृति, हमारे घर की स्थूल प्रकृति भी हमारे विष से प्रभावित होती है, ये जरा ध्यान रखना। जो चेतन व्यक्ति, ये शरीर मन बुद्धि का संगात ही प्रभावित नहीं होता, सब कुछ प्रभावित होता है। नहीं तो पवित्र अपवित्र की बात ही हमारा शास्त्र नहीं करता, आंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि की बात ही नहीं करता। कोई भी जगह का बैठ जाओ, कोई भी जगह का खा लो, कुछ भी कर लो, क्यों हम ब्रह्मार्पणम कर रहे हैं? ये शुद्धि है। क्यों हम नहाते हैं? ये शुद्धि है। क्यों जगह साफ रखते हैं? शुद्धि है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कोई विश वाला कहां आके बैठ गया होगा, उसने क्या विचार किया होगा, सूक्ष्म रूपेण उसका जो संस्कार है यहां वहां भटकते होंगे। इसके लिए डर से सब शुद्धि के लिए भी पूरा जीवन डालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सब में एक्सट्रीम ले लेते हैं। शुद्धि यानी कुछ मर्यादित शुद्धि रखिए, और वो सब करके ये जो प्राप्त करना है, जो श्रवण है, श्रवण के लिए आपकी जगह बना लीजिए, फिर उसके पीछे ही नहीं पड़ना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एकदम ही समभाव से ये सब साधनाएं की जाती है। तो विष के बारे में अब सोच लीजिए कि विष की बात पुष्पदंत ने की, विष यानी विचार। तो अभी हम जो साधक है उसे बराबर सतर्क रहना है कि एक भी विष का विचार नहीं आए। भाई विष का विचार यानी राग का विचार, विष का विचार यानी द्वेष का विचार, काम का विचार, क्रोध का विचार, शरीर मन बुद्धि के अहम भाव का विचार जो है ये विष है, ये समझ लेना। ये विचार आए, आने के बाद पता चलता है कि विचार आ गया, अब उसके ऊपर आप कर्म नहीं कीजिए। और इसीलिए परमात्मा, कृष्ण परमात्मा ने बराबर कह दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन की बात को वहां ही रुकवा दीजिए। हमारे लिए काम का क्या आ गया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करने में परमात्मा इतने कृपालु है कि कर्म करने में हमें स्वतंत्रता दे दी है, नहीं तो क्या होता? ये विष के विचार तो अभी भी आ रहे हैं, ये पल में भी आ गए हैं, अभी यहां बैठे बैठे भी छू गई है वो हवा, पर उसके ऊपर आपने कर्म नहीं किया। आप यहां बैठे रहे, घर जाके सोचूंगा, आप यहां बैठे रहे, तो आप यहां बैठे किस प्रकार रहे? कर्मण्येवाधिकारस्ते। परमात्मा ने अधिकार दिया है कि कर्म अभी करना या नहीं करना, उठ जाऊं और विष का जो विचार हुआ उसके ऊपर ध्यान दूं या प्रवचन सुनने के बाद करूं। हाँ, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका उपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। तो याद रखना, ये विष रूपी विचार यानी ही विष, ध्यान रखना ये विचार कौन से है। आपके विचार के साक्षी बनो, उसके दृष्टा बनो, उसको देखते रहो, और विष है, संसार है, खुद ने खड़ा किया है, तो शिकायत मत कीजिए। यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। आगे कहते हैं कि ये तो ब्रह्मांड का नाश करने वाला है ये विष। ये मेरे मन में जो विष आया वो मैं पूरा ब्रह्मांड लेके घूम रही हूं ना, मैं यानी आप सब। ये पूरा शरीर मन बुद्धि है वो क्या है? माइक्रोकॉस्म बता रहे हैं ना, इसमें आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है क्या? हाँ या ना, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हाँ पांच तन मात्राएं है, हाँ महत्व है, हाँ अहंकार है, हाँ अहम है, हाँ और उसे जानने वाला पुरुष है कि नहीं, हाँ तो आप कौन हो गए, पूरा ब्रह्मांड हो गए ना। तो एक विचार पूरे ब्रह्मांड को बिगाड़ता है, इसलिए शंकर भगवान ने क्या किया, पी गए आपके विश्व वाले विचार को, पी जाना, मुख में से बाहर नहीं निकालना, यही समझना है। कोई आप्तजन के पास भी बाहर नहीं निकालना, बाहर ही नहीं निकालना है,